तेदेव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधवो समदृशो भगवत प्रपन्ना तान नोपसीद हरेर गदया विगुप्तान नैषाम वयम नच वय प्रभवाम काले प्रभवाम दंडे। देखो जो व्यक्ति भगवान के इस पवित्र गाथा को सुन चुके हैं, भगवान के शरण हो चुके हैं, ऐसे लोगों के पास आप मत जाना। वहां पर न तो मेरी गति है पहुंचने की, न आप लोगों की गति है। आप तो उन लोगों को लेकर के आओ जो भगवान के चरणारविंदों का मकरंद रस पान करके मस्त हुए वे संत महापुरुष हैं, उनके मुख से निकला हुआ जरा सा भी रस नहीं पिया है और विषय का विषैला जल पिया है, उन लोगों को खुल करके तुम यहाँ ले आओ, कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन भगवान के सामने जिन्होंने एक बार भी नमस्कार कर लिया है, प्रणाम कर लिया है, नाम ले लिया है, वो हमारी सीमा के बाहर रहने वाले जीव हैं, हमारी सीमा में आने लायक नहीं है। जिनके पास जिह्वा है लेकिन नाम भगवान का नहीं लिया, जिनके पास हृदय तो है लेकिन भगवान का ध्यान नहीं किया, जिनके पास कान है लेकिन भगवान की कथा नहीं सुनी और संतों का सत्संग नहीं सुना, जिनके पास सिर है लेकिन भगवान के सामने जो नहीं झुका है, उनको आप धड़ल्ले से लाओ, निर्बाध रूप से लाओ, उनके लाने में कोई मना नहीं है। और दूसरे लोगों के पास भाई भगवान का जरा सा भी नाम ली, थोड़ा भी नाम लिया है, उसके पास जाने का तुम्हें अधिकार नहीं है। ये बात तो उनको कह दी और अब आंख बंद करके यमराज जी भगवान से क्षमा याचना करते हुए कहते हैं कि तत्क्षम्यताम स भगवान पुरुष पुराणो नारायण स्व पुरुषैर यदसत् कृतन्नः स्वानाम अहो न विदुषाम रचितांजलिनाम क्षांतिर्गरीयसि नमः पुरुषाय भूमने। हे देवादिदेव पुरुष, हे नारायण, हे पुराण पुरुषोत्तम, मेरे दूतों ने किसी भी प्रकार से यदि आपका और आपके भक्तों का अपराध कर दिया है तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके आपके सामने क्षमा याचना करता हूँ। मैं भी आपका एक दास ही हूँ और आप अपने सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए दास के कोई अपराधों को नहीं गिनते हैं, तो आप किसी प्रकार से मेरे इस अपराध को चित्त में नहीं लावें और मुझे हृदय से बिल्कुल सर्वथा क्षमा कर देवें। इस प्रकार से यमराज जी ने क्षमा याचना की है अजामिल का प्राण ले जाने वाले यमदूतों के अपराध के कारण। जो अजामिल इतना अपराधी था, उसके अपराध का तो कोई पता ही नहीं चला कहां गए उसके अपराध, नाम ने सारे अपराध खत्म कर दिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, सुनाना आपने किस प्रकार से भगवान का नाम हम लोगों का पोषण करता है, हम लोगों के पापों को देखता भी नहीं है। माँ कोई पापों को देखती है, बालक के अपराध को देखती है? माँ को सब पता है, छोटी अवस्था से लेकर बड़ा हुआ तब तक उस बालक ने क्या क्या किया, लेकिन माँ कभी बच्चे को कुछ कहती भी नहीं है। बहुत ज्यादा कभी कोई बात चले तो माँ इतना ही कह सकती है कि बेटा तुझे पाला था, बहुत कष्ट उठाया है, तुम जरा विचार करो, वो भी उसको सावधान करने के लिए कहते हैं, अपना एहसान जमाने के लिए नहीं कहते। और भगवान देखो कैसे पालन करते हैं, कितनी दया करते हैं भगवान। तो तस्मा संकीर्तनम विष्णु, इसलिए सारे जगत का मंगल करने के लिए और अमंगलों का नाश करने के लिए एक भगवान का नाम संकीर्तन यही पर्याप्त है, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। भगवान के नाम की महिमा को सुने और उनका बड़े प्रेम से नाम लेवे, उससे जैसे अंतःकरण की शुद्धि होती है ऐसी दूसरे उपाय से नहीं होती है। भगवान के चरण रूपी कमल है, उस कमल में यदि अपने मन को भौंरा नहीं बनाया है और विषय रूपी और फूलों की तरफ इस मन के भौरे को ले गए, तो भाई कहीं उसको वास्तविक रस तो मिलेगा नहीं। और भगवान के चरणों को छोड़ देने के कारण से उसको बड़ा भारी कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए भक्तिहीन पुरुष को अपने पापों के बीच में से गुजरना पड़ेगा। अतः अपने मन को भगवान के चरण रूपी कमल का भौरा बना करके रखो और वहां जो अमृत है उस अमृत को लूटने दो। ये जो भगवान का जो पवित्र चरित्र है, इत्थम स्वभर्ति गदितम भगवान महित्वम संस्मृत्य विस्मित धियो यमकिंकरास्ते। यमराज जी के दूतों ने जब यमराज जी के मुख से ये बात सुनी और भगवान के नाम की महिमा इस प्रकार से सुनी, तब से वे हर प्राणी के विषय में विचार करते हैं कि भाई इस प्राणी को हम ले जावें कि नहीं ले जावें। तो वो अपना खाता भाई देखते हैं कि इसने सत्संग किया है, कथा सुनी है, नाम लिया है, कीर्तन किया है, तो भाई पाप भी तो किया है कि भाई ये सब आगे भगवान देखेंगे, ये हमारा देखने का काम नहीं है, इसलिए वे उससे दूर रहते हैं। दृष्टुं च बिभ्यति तथा प्रभृति स्मराजन, तब से वे हर प्राणी से डरते रहते हैं जिसने भगवान का नाम लिया है, सत्संग किया है, कथा सुनी है, ऐसे प्राणी से यमराज जी के दूत है वो हरदम डरते रहते हैं। ये बनावटी बात नहीं कि ये परीक्षित, ये पवित्र इतिहास है। और मलयाचल पर बैठे हुए स्वयं अगस्त्य मुनि ने भगवान की पूजा करते करते हम लोगों के सामने बात कही थी, वो बात हमने आपको बताई है। इसलिए भगवान का नाम सब प्रकार के अमंगलों को, पापों को दूर करने वाला है, अतः बड़े प्रेम के साथ भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
भगवत प्रसादार्थ कही जाने वाली श्रीमद् भागवत की कथा के इस महान पवित्रतम अनुष्ठान में पोषण नाम के छठे स्कंद के चौथे अध्याय से आज कथा प्रारंभ की जा रही है। यह जीवात्मा अनादि काल से परमात्मा की कृपा को भूला हुआ है और संसार में अपनी बेसमझी से भटक करके तरह तरह से कष्ट पा रहा है। जीव की इस दुर्दशा पर भगवान को बहुत दया आती है और वे इस दया के कारण इस जीवात्मा को जगह जगह संभालते हैं और जगह जगह सावधान करते हैं। भगवान का एक बड़ा विचित्र स्वभाव है कि जब भी जीव भगवान के सन्मुख होता है, भगवान उसके अपराधों को बिल्कुल भूल जाते हैं। यही भगवान का अनुग्रह है और इसी से इस जीवात्मा को भगवान का पोषण मिलता है। अजामिल ने पुत्र के बहाने से भगवान का नाम लिया, इतने में भगवान के पार्षद आकर उसको महान विपत्ति से छुड़ाते हैं। बार बार याद दिलाई जा रही है कि इस अजामिल ने इस जन्म में ऐसा ऐसा पाप किया है, परंतु भगवान के पार्षदों ने उस पर विचार ही नहीं किया और पुत्र के बहाने से लिए हुए नाम को उन्होंने उसके कल्याण का बहुत सुगम साधन माना और दिखाते हुए भी वे उस पाप को नहीं देखे। कितना बड़ा विलक्षण भगवान का ये अनुग्रह है कि उन्होंने नाम में ऐसी शक्ति रखी है। आइए और भगवान का अनुग्रह हम देखें। भगवान किस प्रकार से आत्मीय लोगों के अपराधों को भूलते हैं और प्रेम करते हैं। भागवत का ये छठा स्कंद भगवान की दयालुता को बताने वाला है। हम लोगों को चाहिए कि छठे स्कंद के पात्रों पर जैसे जैसे भगवान का अनुग्रह देख रहे हैं उसके अनुसार हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए कि वे बहुत दयालु हैं। अपने पापों पर विश्वास न कर भगवान की दयालुता पर विश्वास करना चाहिए और भगवान की दयालुता का लाभ लेना चाहिए। उसी क्रम में अब आगे महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं। राजा परीक्षित कह रहे हैं कि आपने तीसरे स्कंद में और चौथे स्कंद में सृष्टि के विस्तार के विषय में थोड़ा बहुत कहा है, तो सामासिकस्त्वया प्रोक्त है, वहां उस विषय को आपने संक्षेप कर दिया था। जरा ये बताइए, देवताओं का, असुरों का, मनुष्यों का, सर्पों का, पशुओं का, पक्षियों का स्वयंभू मनु के राज्य में किस प्रकार से विस्तार हुआ? तस्यैव व्यासम इच्छामि, मैं उसी के व्यास को जानना चाहता हूँ। देखो, ध्यान से सुने महाराज परीक्षित, केवल सुनने के लिए बैठे हूँ ऐसी बात नहीं है, वे सुन भी रहे हैं, विषय का मनन भी कर रहे हैं और कौन सा विषय कहाँ छूट गया, अवांतर प्रसंग बीच में आ गए जो बहुत उपयोगी प्रसंग थे, उन सब को सुनते सुनते जब एक उपसंहार के स्वरूप में श्री सुखदेव जी महाराज ने अजामिल उपाख्यान कहा, तो उसी तीसरे स्कंद के छूटे हुए प्रश्न को यहाँ महाराज परीक्षित उपस्थित कर रहे हैं। महाराज परीक्षित की इस प्रकार से सुनने की निष्ठा को देखकर सुखदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और सारी की सारी उस सभा के अंदर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक सुखदेव ने परीक्षित जी से कहा कि हे परीक्षित, अब तुम्हारे छूटे हुए प्रश्न को मैं बताता हूँ। प्राचीन वर्री के जो 10 बेटा प्रचेतागण भगवान के दर्शन प्राप्त करके वे जब अपनी राजधानी में आए तो देखा कि हमारे महाराज, हमारे पिता तो एकदम प्रजा के पालन के कर्म से निवृत्त हो चुके हैं, कारण कि उन्होंने पुरंजन उपाख्यान सुनने के बाद अपने राज्य से, अपने गृहस्थ से सबसे मन हटा लिया था। पृथ्वी पर खेती नहीं हो रही थी, अतः बहुत वृक्ष बढ़ गए, तो प्रचेताओं ने वृक्षों को काटना चालू किया। इतने में ही चंद्रमा आए, उन्होंने कहा कि अरे बड़भागियों, ये आप क्या करते हो, वृक्षों को काट रहे हो, इन वृक्षों से तो बहुत से प्राणियों को आश्रय मिलता है, अन्नम चराणाम अचराह, चराचर प्राणियों का खाद्य चराचर प्राणी है, इसलिए आप प्रजा की रक्षा के लिए वृक्षों को मत काटो और इन्हीं वृक्षों के द्वारा पालित पोषित वो जो प्रमलोचना अप्सरा की कन्या है मारीषा, जिसके साथ विवाह करने के लिए आपको भगवान ने आज्ञा दी है, उसे आप स्वीकार करो और प्रजा का विस्तार करो। आप तो प्रजा का उच्छेदन करने जा रहे हैं, वृक्षों को काट रहे हैं, ये भी महान अनर्थ है, अतः आप प्रजा का विस्तार करो और ये मारीषा जो अप्सरा कन्या है उसको तुम स्वीकार करो। प्रचेताओं ने चंद्रमा की बात मान ली और उससे वहां दक्ष ने जन्म लिया। जिस दक्ष ने पूर्व में शंकर भगवान का अपराध किया था और जिसको बकरे का मुख मिला था, अब वही दक्ष यहाँ प्रचेता के यहाँ जन्म लेता है, अतएव दक्ष को प्राचेतस्वी कहा जाता है। उस दक्ष प्रजापति ने अपने मन के संकल्प से और संयोग से भी सृष्टि पैदा की। पहले उन्होंने विचार किया
कि मुझे तपस्या करनी चाहिए, तपस्या करने के बाद मुझे जैसी भगवान की आज्ञा हो उसके अनुसार सृष्टि का विस्तार करना चाहिए। तो वे विंध्याचल पर्वत पर अगमर्षण नामक तीर्थ पर गए, वहां का पवित्र जल उन्होंने लिया, उसमें स्नान किया और तपसा अतोषयद हरिम, अपनी तपस्या से भगवान को संतुष्ट किया। उन्होंने एक बहुत ही हंसगुह्य नाम का स्तोत्र था, उस स्तोत्र का पाठ किया और उससे भगवान प्रकट हो गए। वह स्तोत्र प्रजापति दक्ष इस प्रकार से बोले थे कि नमः पराया वितथानुभूतये गुणत्रयाभास निमित्त बंधवे, हे परात्पर परब्रह्म परमेश्वर, आपका अनुभव यथार्थ है, आप जीव और माया के नियंत्रक हैं, जब तक गुणों पर बुद्धि रहती है तब तक आपके स्वरूप को जाना नहीं जा सकता है, और कोई प्रमाणों के आधार पर आपको जानना चाहे तो निवृत्त मानाए, सारे मान माने प्रमाण निवृत्त हो जाते हैं, आप में पहुंच नहीं सकते हैं, लौट आते हैं, इसलिए आप प्रमाण गम्य भी नहीं है, आप प्रमेय भी नहीं है। ये जीव सदा से ही आपका मित्र है, आपने इसे सदा ही अपना मित्र माना है, परंतु इस देह में आसक्त होने के कारण ये जीव आपकी मित्रता को भूल गया है। जिस प्रकार से रूप से नेत्र नहीं जाना जाता, ऐसे गुणों के द्वारा आपको कैसे जाना जा सकता है, परंतु सर्वम पुमान वेद, आप सबको जानते हैं, आप सर्वज्ञ हैं, जीव आपको नहीं जानता, आप सबको जानते हैं। जब यदोपरामो मनसो नाम रूप रूपस्य नष्ट स्मृति संप्रमोषात्, जिस समय में मन संपूर्ण वृत्तियों से उपराम हो जाता है और दृष्ट और स्मृति देखा हुआ और याद किया हुआ जितना भोग है उससे ये ऊपर उठ जाता है, और वृत्तियां जब उपरत हो जाती हैं उस समय में अपने आप में स्थित ही आपका जो अपना दिव्य रूप है उस रूप को किसी अंश में ये अपने अनुभव में ला सकता है। बड़े बड़े मनुष्यों ने लकड़ी में छिपी हुई आग के समान अपने ही अंतःकरण में आपका अनुभव किया है। आप अशेष माया का निषेध करके अपने महान आनंद के अंदर निवास करते हैं। सृष्टि में सर्वनामा जितने नाम है सब आप ही का है, जितना रूप है वो आप ही का है। हे दयानिधान प्रसीदताम, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और प्रसन्न होकर के आप मुझे अपना लीजिए। जो कुछ वाणी से कहा जाता है, जो कुछ आंखों से देखा जाता है, जो कुछ मन से सोचा जाता है, वैसा आपका रूप नहीं होता। माभूत स्वरूपम, आपका स्वरूप उससे भी बड़ा विलक्षण है। ये संसार आप में है, आपसे है, आपका है, आपसे बना हुआ है, आप ही के लिए है। और कुरुते कार्यते च, जो कुछ करना धरना है वो आप ही के द्वारा हो रहा है, चाहे किसी से करवा दें, चाहे आप स्वयं करें, सब आप ही की क्रिया हो रही है। इस प्रकार से आप सबके महाकारण हैं, आपका कारण कोई नहीं है, आप एक अद्वितीय हैं। बड़े बड़े ज्ञानी लोग आपके विषय में तरह तरह का वाद विवाद और संवाद करते हैं और उसमें मोहित हो जाते हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होता है, किसी भी रूप से ये जीव स्वीकार करता है वह उतने अंश में सही बोलता है। जैसे योगी लोग ये मानते हैं कि आपका हाथ पैर आदि से युक्त साकार स्वरूप है, सांख्यवादी यह कहते हैं कि वो तो निर्गुण है, निराकार है, उनके हाथ पैर मस्तक नहीं होते। ये दोनों ही बात वास्तव में सुनने पर विरुद्ध जरूर मालूम देती है, परंतु जब आपके स्वरूप पर विचार किया जाता है तो ये विरुद्ध बात ठहरती नहीं है। क्यों कि हस्त चरण आदि भी किसी न किसी के आधार से रहते हैं, वो आधार आप हैं। और निर्गुण निराकार ये कहना अर्थात गुणों का निषेध करना और आकृति का निषेध करना, तो इस निषेध की भी कोई न कोई अवधि है। तो सगुण पक्ष में आधार रूप से आप हैं और निर्गुण पक्ष में सांख्य पक्ष में अवधि रूप से आप हैं। कैसे कैसे इस प्रकार से विवाद करके लोग मोहित हो जाते हैं। हे अनंत भगवान, आपके चरण कमलों का जो महापुरुष सहारा ले लेते हैं, वे आपको सर्वत्र सब जगह आप ही का स्वरूप देखते हैं। यह प्राकृतिक ज्ञान पथैर जनानाम यथाशयम देह गतो विभाति, और प्राकृत जो पुरुष हैं उन लोगों को उन महापुरुषों से जो ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान के द्वारा उनकी भी बुद्धि निर्मल हो जाती है, अंतःकरण निर्मल हो जाता है और वे आपको प्राप्त हो जाते हैं। अतः महाराज, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, कृपा कीजिए और जिस मनोरथ से मैंने ये तपस्या की है उसके विषय में आप आज्ञा दीजिए। इस प्रकार उस पवित्र तीर्थ पर पवित्र भाव से किए हुए इस हंस गुह्य स्तोत्र से भगवान भक्तवत्सल बड़े प्रसन्न हुए और गरुड़ पर विराजमान होकर तत्काल भगवान आठ भुजा से दक्ष के सामने प्रकट हो गए। भगवान शंख चक्र गदा पद्म तलवार ढाल बाण पाश हाथ में लिए हुए पीताम्बरधारी वनमाला पहने हुए श्रीवत्स का चिन्ह जिनके वक्षस्थल पर है, कौस्तुभ मणि जिन्होंने पहन रखी है, किरीट कुंडल से जिनकी आभा और दे दीप्यमान हो रही है, ऐसा भगवान का त्रैलोक्य मोहन रूप था। नारदादि पार्षद चारों तरफ उनकी स्तुति कर रहे हैं, सिद्ध चारण गंधर्व उनका गान कर रहे हैं। ऐसा दिव्य भगवान का स्वरूप देखा तो दक्ष जी महाराज खड़े होकर उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। उसके बाद भगवान ने कहा, हे दक्ष, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। सबसे बड़ी तपस्या क्या है? मई भावम परंगत है, तुमने जो मुझ पर विश्वास किया और विश्वास से जो तुमने मुझे अपनाया और अपने दिल की बात मुझसे कही है, ये बड़ा श्रेष्ठ भाव तुम्हारा देखा है, उससे मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे यहाँ प्रकट हुआ हूँ। ब्रह्मा है, शंकर है, तुम लोग हो, मनु है, देवता है, ये सब मेरी विभूतियाँ हैं। इतना होते हुए भी मुझे तपस्या बहुत अच्छी लगती है, तपस्या मेरे अंग है। देखो दक्ष, मैं तुमको इतना ही संक्षेप में बता देना चाहता हूँ कि सृष्टि के आदि में, मध्य में, अंत में केवल मैं ही मैं हूँ। पहले भी मैं था, अभी भी मैं हूँ, और उस समय में भी संज्ञान मात्रम, कोई संगी नहीं था, केवल संज्ञान था, ये नहीं था, केवल ज्ञान ही था, वो ज्ञान ही मेरा रूप है। और प्रसुप्तम इव विश्वतः, और जब मैं जगा, पहले सोए हुए के समान, जैसे सब एक ही सत्ता रहती है, जगने पर उसको तरह तरह से वस्तुएं दिखती है, तो मैं अपनी योग निद्रा में था तो विश्व मुझ में लीन था, और जब मैंने संकल्प किया तो सारा संसार प्रकट हुआ है। मुझे संसार का विस्तार बहुत अच्छा लगता है, मैंने ही ब्रह्मा को बनाया है। नहीं नहीं, ब्रह्मा के रूप में मैं ही हूँ, मैं ही महादेव के रूप में हूँ। अब तुम सृष्टि का विस्तार करो। पंचजन नाम का जो प्रजापति है, उसकी कन्या है असिकनी, उसको तुम पत्नी रूप से स्वीकार करो, और अब तुम पति पत्नी के रूप में मिथुनव्यवाय धर्मिण्याम भूरिशो भावयिष्यसि संयोगजन्य सृष्टि बनाओ और अपनी मानसी सृष्टि भी बनाओ। तुम्हारे बाद जितनी प्रजा होगी, अब वे संयुक्त तो होकर ही सृष्टि का विस्तार करेंगी, और सृष्टि पर आए हुए मनुष्य लोग और दूसरे प्राणी मुझे बहुत प्रिय लगते हैं, जिसमें मनुष्य मुझे अपना भाग देंगे और मैं मनुष्यों का पालन करूंगा। मेरा काम तो सबके पालन करने का है, फिर भी मदीयया भविष्यन्ति हरिष्यन्ति च मे बलिम, और वो मुझे बलि देंगे, उनका पालन पोषण होगा, मुझे भाग देंगे, माने मुझे सब वस्तुएं अर्पित करेंगे, इससे मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। हे दक्ष, अब तुम मेरा ही काम ये सृष्टि के विस्तार का करो। ऐसे विश्व भावन भगवान दक्ष को आश्वासन दिए और देखते ही देखते वे अंतरित हो गए। दक्ष प्रजापति अब अपने स्थान पर आ गए और उनका पंचजन की पुत्री असिकनी के साथ विवाह हुआ और उससे उनके सृष्टि का विस्तार हुआ। भगवान ने दक्ष की तपस्या पर प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और असिकनी के साथ विवाह करने की आज्ञा दी। भगवान की आज्ञा को
स्वीकार करते हुए दक्ष प्रजापति ने अशकनी के साथ विवाह किया और उससे 10,000 हरियश्व नाम के पुत्रों को पैदा किए। अपने पुत्रों को आदेश दिया कि बेटा आप लोग पश्चिम दिशा में जाओ और भगवान की आराधना करो। पश्चिम दिशा में चले गए हरियश्व। वहां पर नारायण सरोवर है, ऋषि मुनियों का वो पवित्र देश है। वहां उन्होंने तपस्या की। तपस्या के कारण उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया और प्रजा की वृद्धि के लिए वे अपना संकल्प लिए हुए थे। इतने में नारद जी महाराज वहां आ गए। नारद जी ने आकर कहा कि हे हरियश्वों, आप लोगों ने तपस्या की, बड़ा अच्छा कार्य किया, परंतु आप तपस्या के द्वारा सृष्टि का विस्तार चाहते हो, तो देखो पहले आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद सृष्टि का विस्तार करना। कि महाराज आपके क्या प्रश्न है? तो आप इनके प्रश्न हैं, जरा आप ध्यान से सुनेंगे। बताओ हरियश्वों, एक ऐसी पृथ्वी है जिसका कोई अंत नहीं है। दूसरा हमारा प्रश्न है कि एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष रहता है। तीसरा एक ऐसा बिल स्वर्ग है जहां जाने का तो रास्ता है, वापस आने का रास्ता है ही नहीं। एक ऐसी स्त्री है जो बहुत रूप बना लेती है। एक ऐसा पुरुष है कि जो पुंश्चलिका पति है। एक ऐसी नदी है कि जो दोनों ओर बहती है। नदी का प्रवाह दोनों ओर नहीं बहा करता, परंतु बताओ एक ऐसी नदी है कि जो दोनों ओर ही समान रूप से बहती है। एक ऐसा घर है कि जो 25 तत्वों से बना हुआ है। एक ऐसा हंस है जिसकी बड़ी विचित्र कथाएं हैं। एक ऐसा चक्र है कि जिसके आरे हैं बहुत तीखे हैं। बताओ, इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग जब तक नहीं समझ पाओगे तब तक अपने पिता के आदेश को कैसे समझोगे? और एक ऐसा पिता है कि जिसका आदेश मानना भी बहुत जरूरी है। अब बताओ, अनुरूपम अविज्ञाय अहो सर्गम करिष्यथ। जब तक आप इन प्रश्नों का ठीक ढंग से तात्पर्य नहीं समझोगे तब तक सृष्टि का विस्तार कैसे करोगे? हरियश्व ने देखा कि नारद जी ने बड़ी विचित्र पहेली पूछी है। ये पहेली पूछने का कोई अभी नया ही आविष्कार नहीं है। भागवत के जमाने में भी पहेलियां पूछते थे जैसे नारद जी ने पूछी है। तो उन हरियश्वों ने वाचक कूटम वचनों की गंभीरता समझते हुए ध्यान किया, उनका अर्थ समझा और उत्तर देना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि महाराज आप जो बता रहे हैं कि एक ऐसी पृथ्वी है जिसका अंत नहीं, वो पृथ्वी और कुछ नहीं, ये जीव ही है। जब ये जीव कारण शरीर के साथ मिलता है तब ये कब तक संसार में भटकेगा, इसका कोई अंत नहीं है। कब से भटक रहा है इसका भी कोई पता नहीं है। कब तक भटकता रहेगा इसका कोई अंत नहीं है। आपने कहा कि एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष है, तो ये सृष्टि रूपी राष्ट्र है जिसमें केवल एक भगवान ही भगवान है। पृथ्वी है तो भगवान, जल है तो भगवान, थल है तो भगवान, वायु है तो भगवान, आकाश है तो भगवान, जितने पार्थिव पदार्थ हैं वो भगवान, जीव है तो भगवान, भगवान ही भगवान है, स्वाश्रय है और वे अपने स्वयं के आश्रय पर हैं। पुमान नवेति यद गत्वा। और आपने कहा कि एक ऐसा बिल है जहां पर जाने का रास्ता है लेकिन आया नहीं जाता, वो वास्तव में बिल कौन सा है? कि वो भगवान का वैकुंठ धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाया तो जा सकता है लेकिन वापिस नहीं आया जा सकता, तो वो एक भगवान का स्थान है। आपने कहा कि एक ऐसी स्त्री है कि जिसके बहुत से रूप है, वो स्त्री और कुछ नहीं, हमारी बुद्धि ही है,
बुद्धि में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उठते हैं, विचार बदलते हैं, निश्चय बदलता है, नाना रूपा आत्मनो बुद्धि, यही वास्तव में कभी खाने की इच्छा करती है, कभी पीने की इच्छा करती है, कभी जाने की इच्छा करती है, यह स्वेरिणी के समान है। और यही पुंश्चरी है कि जिसका पति जीवात्मा इसके कहे कहे चलता रहता है, जीवात्मा इसके कहे कहे चलने से अपना ऐश्वर्य को भूल गया। तत्संग भ्रंशित ऐश्वर्यम, जैसे कोई व्यभिचारिणी स्त्री के साथ रह जाए, वेश्या के साथ रहे, तो उस मनुष्य का सब गौरव नष्ट होता है। इसी प्रकार से इस बुद्धि के कहे कहे जब ये जीव चलने लग गया तो जीव का अपना ऐश्वर्य था वो वही नष्ट हो गया। आपने कहा कि एक नदी ऐसी है जो दोनों ओर बहती है, वो दोनों ओर नदी बहने वाली और कुछ नहीं है, संसार रूपी नदी है कि जो उत्पन्न और नष्ट, उत्पन्न हो रही है नष्ट हो रही है, उत्पन्न हो रही है और नष्ट हो रही है, दोनों ही तरफ इसका वेग बड़े तेजी के साथ है। आपने कहा कि 25 तत्वों से बना हुआ एक घर है, तो वो 25 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है, 25 तत्वों से बना हुआ ये संसार है, ये सब भगवान का ही घर है। और आपने कहा कि एक ऐसा हंस है कि जिसकी बड़ी विचित्र कहानी है, वो हंस और कुछ नहीं, ये शास्त्र ही एक हंस के समान है। देखो शास्त्र है वो हंस के समान क्यों बताया, कि हंस के सामने दूध रख दो, जल रख दो मिलाया हुआ, तो वो दूध पी लेगा और जल को छोड़ देगा। ऐसे ही शास्त्रों में बंधन की मोक्ष की बात बताई कि ताकि जीव है वो बंधन का त्याग करे और मोक्ष को स्वीकार करे, बंध मोक्षानुदर्शनम। और ये काल रूपी ऐसा चक्र है कि इतना तीखा वेग है कि इसमें कोई भी बचा हुआ नहीं है, चाहे चर हो चाहे अचर हो, चाहे स्थावर हो चाहे जंगम हो, चाहे कोई पर्वत हो चाहे कोई छोटा सा तिनका हो, सब काल चक्र के अंदर नष्ट हो रहे हैं। और शास्त्र ही हमारा पिता है, उसको जो नहीं जानता है वो वास्तव में सृष्टि के कर्मों में फंसा रहेगा, तो क्या उसको लाभ होगा। ऐसी नारद जी की बात सुनकर के, देखो नारद जी कहीं तो साक्षात उपदेश देते हैं और कहीं पहेलियों के द्वारा उपदेश देते हैं। इन हरियश्वों को उन्होंने पहेलियों से उपदेश दिया, तब हरियश्वों के विचार आ गया कि अरे प्रापणी तो एक परमात्मा है, सृष्टि में हमारा आना परमात्मा के लिए हुआ है, सृष्टि के विस्तार का हमसे क्या लेना देना। वे तो नारद जी के वचनों को सुनकर के और उनके प्रश्नों को सुनकर के उसी में ही उत्तर में समाहित हो गए और अपने पिता के घर गए ही नहीं। किसी ने आकर दक्ष से कहा कि देखो आपके बेटों को तो नारद जी ने अपना चेला बना लिया, तो दक्ष को ये बात बहुत बुरी लगी। फिर दक्ष ने 1000 फिर सबलाश्व नाम के लड़के पैदा किए, सबलाश्वों को कहा कि जाओ तुम भी पश्चिम दिशा में भगवान का भजन करके आओ, फिर सृष्टि का विस्तार करना। तो वे वहां गए सबलाश्व, सबलाश्व जाकर के तपस्या करने लगे, तो फिर नारद जी वहां भी आ गए। नारद जी आए तो नारद जी ने कहा देखो भाई महाजनो ये न गतः स पंथा, बड़े आदमी जिस मार्ग से चले जाते हैं वही वास्तव में रास्ता होता है, तुम्हारे बड़े भाइयों ने हमारे वचनों का तात्पर्य समझ लिया, भगवान के भजन में लग गए, अब तुमसे भी हम प्रश्न करते हैं उसका तात्पर्य समझ लो और भगवान के भजन में लग जाओ। तो उन्होंने भी नारद जी के प्रश्नों को समझ लिया, पहेलियों को समझ लिया और समझ करके वे भगवान की आराधना में लग गए। फिर मालूम चला दक्ष प्रजापति को कि इस प्रकार से नारद जी ने हमारे फिर दोबारा गए वे सबलाश्वों को भी अपना शिष्य बना लिया, उनको भी भगवान के भजन में लगा लिया है, तो दक्ष को बहुत बुरा लगा। एक दिन की बात है कि नारद जी महाराज नारायण नारायण करते हुए जा रहे थे, दक्ष जी बीच में मिल गए। अब दक्ष जी बीच में मिले तो नारद जी को फटकारते हुए दक्ष ने कहा कि ए नारद, ये क्यों गैरवा वस्त्र धारण कर रखा है, क्यों ये साधुओं का रूप बनाया है, बेचारे साधुओं को तुम कलंकित करते हो, अपने हाथ में तुम वीणा लिए हुए केवल लोगों को ठगते हो, क्यों महाराज क्या बात हुई। देखो ये ध्यान से सुनना हो, छठा स्कंद है, दक्ष के द्वारा एक संत का अपराध हो रहा है, लेकिन भगवान कितने दयालु हैं कि दक्ष को कोई दंड नहीं देते हैं। नहीं तो भगवान का स्वभाव तो क्या है कि भाई कोई अपना अपराध करे तो उसको भगवान सह लेते हैं, लेकिन भागवतापराध भगवान नहीं सहते। परंतु छठे स्कंद का ये पात्र है दक्ष, तो भगवान सब सह रह रहे हैं। और वो नारद जी को फटकारना चालू किया कि हमारे छोटे छोटे बच्चा अभी उन्होंने अध्ययन नहीं किया तो ऋषि ऋण समाप्त नहीं हुआ, यज्ञ नहीं किया तो देव ऋण समाप्त नहीं हुआ, और उनका विवाह नहीं हुआ, संतान नहीं हुई तो पितृ ऋण समाप्त नहीं हुआ। जो भी संसार में आता है उसके ऊपर तीन ऋण रहते हैं, इसलिए बाल्यावस्था में अध्ययन करने पर ऋषि ऋण उतरता है, और उसके बाद धर्मानुष्ठान करने से देव ऋण उतरता है, और उत्तम संतान पैदा करने से पितृ ऋण उतरता है। ये तीनों ऋणों को आपने उतारा नहीं, और उससे पहले ही हमारे बच्चों को आपने भिक्षुओं का सा मार्ग बता दिया, आपको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। अब नारद जी कह तो सकते थे कि भाई ये सारा ऋण कहां जाकर के इसका मुकदमा लगता है, भाई मालूम है आपको, वो भगवान के वहां जाता है मुकदमा। लेकिन भगवान को ही जो प्राप्त हो गया और जिसकी सिफारिश भगवान तक पहुंच गई और भगवान ने उस फाइल के अंदर कोई ऋण नहीं रखा, तो तुम्हें बोलने का क्या अधिकार है? ये बात नारद जी कह सकते थे, लेकिन नारद जी चुपचाप रहे, सुनते रहे। उपालम, विषयों की तीक्ष्णता को जाने बिना, भोगे बिना विषयों से वैराग्य होगा कैसे नारद? इसलिए तुमने हमारे पुत्रों को पहले विषयों में प्रवेश कराना चाहिए था, उसके बाद त्याग की बात कहनी चाहिए थी। अभी उन्होंने विषयों का अनुभव नहीं किया तो उसकी निस्सारता कैसे जानेंगे? केवल विचार से यदि विषयों की तीक्ष्णता हृदय से नहीं निकलती है तो वो उसको जान करके, विचार करके क्या, उसको भोग करके ही समझेगा। इसलिए तुमने हमारे पुत्रों को बीच में से ही रास्ते से हटाया, तो हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम एक जगह कभी नहीं रहोगे। भ्रमतः पदम, तुम्हारे पैर हरदम फिरते ही रहेंगे, एक जगह तुम्हारा भी घर बार नहीं बसेगा। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण नारायण, बड़ी भारी आप लोगों की कृपा है, आप हम लोगों को श्राप दे रहे हैं कि वरदान दे रहे हैं, पता ही नहीं है। अरे साधु तो वही होता है कि जो रमता रहे, आप हमको एक जगह नहीं रहने की बात की, बड़ी अच्छी बात है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित महात्माओं की यही विशेषता है कि वह सामर्थ्यवान होकर के भी लोगों के अपराधों को सहता रहता है। ये सहना है, ये साधुता है, ये सामर्थ्यवान पुरुष की बात है। अब दक्ष प्रजापति ने सोचा कि लड़का बनाऊंगा तो फिर ये चेला बना लेगा नारद। तब उसने लड़कियां पैदा की, 60 लड़कियां पैदा हुई तो 10 तो उन्होंने धर्म को दे दी, 13 उन्होंने कश्यप जी को दे दी, और 27 उन्होंने चंद्रमा को दे दी, और 2 उन्होंने भूतों को दी, 2 अंगिरा को दी, 2 कृषाश्व को दी, और 4 उन्होंने तारक्ष को दी। इस प्रकार से अपनी 60 कन्याओं का विवाह कर दिया। अब उनका वंश सुनाते हैं कि धर्म को जो भानु लंबा कुकुब्जा आदि दिए, उनमें बड़े अच्छे अच्छे धर्म की संतानें हुई। कहते हैं कि भूत की सरूपा भारिया थी, रुद्र पैदा हुए, अंगिरा के स्वधा पत्नी थी, क्या उससे अथर्वा आदि पैदा हुए, कृषाश्व के आर्चिस नाम की भारिया थी, उससे धूम्रकेश पैदा हुए, और तारक्ष के वनिता, कद्रु, पतंगी और यामिनी नाम की 4 पत्नियां थी, जिससे उनके सर्पादि पैदा हुए, और विनता के तो गरुड़ पैदा हुए और दूसरों के सर्प पैदा हुए। कहते हैं चंद्रमा के 27 पत्नियां थी, उनमें रोहिणी के साथ बहुत प्रेम था, तो दक्ष ने उसको श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी। तब उसके राजयक्ष्मा हो गया, टीबी की बीमारी हो गई, उनके कोई संतान नहीं हुई। फिर दक्ष प्रजापति ने कृपा करके उनके 15 कलाओं में तो शुक्लता दे दी, और 15 कलाओं में जो क्षीणता थी वो क्षीणता रहने दी। इसीलिए चंद्रमा है, 15 दिन घटते हैं और 15 दिन बढ़ते हैं, ये दक्ष शापा, दक्ष का शाप है। अब हम आपको कश्यप जी की जो 13 पत्नियां हैं उनका नाम बताते हैं। आदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमी, ये 13 उनकी पत्नियां थी। जितने जल जंतु हैं, जितने कुत्ते वगैरह हैं, ये सब के सब तिमि से पैदा हुए, चार पैर वाले शर्मा आदि से पैदा हुए, और सुरभि से गायें हैं, भैंसे हैं, भैंस हैं, ये सब दो खुर वाले उससे पैदा हुए, ये गीद और बाज ये सब ताम्रा से पैदा हुए, इस प्रकार से ये पैदा हुए हैं, क्रोध वशा से सर्प आदि पैदा हुए हैं, और धनु से ये 18 प्रधान दानव है ये पैदा हुए हैं, ये सारे के सारे कश्यप जी के यहाँ पैदा हुए संकल्प से भी और उनके संयोग से भी। देखो प्रजापतियों को ये अधिकार होता है कि जैसी सृष्टि चाहे वैसी सृष्टि पैदा कर सकते हैं। कहते हैं उनमें अदिति थे, अदिति के 12 लड़के पैदा हुए, उनका हम तुमको वंश सुनाते हैं, जहां भगवान नारायण ने भी अवतार लिया था। कहते हैं अदिति के विवस्वान पैदा हुए, विवस्वान माने सूर्य, विवस्वान है, आर्यमा है, पूषा है, त्वष्टा है, सविता है, भग है, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शक्र और उरुक्रम माने ये वामन, ये 12 उनके पैदा हुए। कहते हैं 12 लड़के इनके पैदा हुए, इनमें विवस्वान के श्राद्ध देव पैदा हुए जिसे वैवस्वत मनु कहते हैं, क्यों ये संज्ञा से पैदा हुए थे, और इनके यम और यमी भी इन्हीं की सूर्य की कन्या है, सूर्य का ही पुत्र है, यमराज भी सूर्य का पुत्र है और यमुना भी सूर्य का ही पुत्र है। कहते हैं संज्ञा नाम की एक और उनके स्त्री थी जिससे अश्विनी कुमार पैदा हुए, छाया नाम की एक दूसरी पत्नी थी कि जिससे शनिश्चर और सावर्णी मनु पैदा हुए। कहते हैं उसके ही एक तप्ती नाम की कन्या हुई जिसका संवरण के साथ विवाह हुआ था, 9वें स्कंद में ये बात आएगी। कहते हैं अर्यमणो मातृका पत्नी तयोर चर्षणय सुता, अर्यमा के मातृका नाम की पत्नी थी जिससे चर्षणी पैदा हुए। ध्यान देना ये चर्षणी शब्द है, भागवत में 2-3 जगह आता है, रास पंचाध्याय में एक चर्षणी शब्द आएगा, तो ये चर्षणी क्या चीज है इसकी व्याख्या यहाँ कर देते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब मनुष्य का स्वरूप बनाना चालू किया था तो मनुष्य बनने से पहले मनुष्य के समान ही चर्षणी जाति का एक आकार बना, तो उसमें कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक रख दिया। कहते हैं वो चर्षणी ठीक मनुष्य के बराबरी जैसी जाति है, अतः चर्षणी नाम उदगात, वो वहां आया चर्षणियों के शोक को दूर करने के लिए, चंद्रमा पैदा हुए उदित हुए ब्रास पंचाध्याय में आया, तो वो चर्षणी माने मनुष्य। तो कहते हैं ये चर्षणी पैदा हुए थे अर्यमा से, पूषा के तो बिचारे के दांत पहले ही तोड़ दिए गए थे इसलिए उनके कोई लड़का हुए नहीं क्योंकि खाते पीते बहुत कम थे। त्वष्टा के अब ध्यान से सुना, त्वष्टा का विवाह दैत्यों की एक बहन थी रचना उसके साथ हुआ, उससे सन्निवेश और विश्वरूप नाम के 2 लड़के पैदा हुए। एक बार परीक्षित देवताओं पर ऐसी आपत्ति आई कि गुरुजी ने उनके अपराध से उनका त्याग कर दिया, तो विश्वरूप को उन्होंने अपना गुरु बनाया, अपने भतीजे को उन्होंने गुरु बनाया, अपने बेटे को उन्होंने गुरु बनाया। परीक्षित ने पूछा कि महाराज देवताओं से ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिससे बृहस्पति जी नाराज हो गए। देखो अब ध्यान देना, भगवान इस 6 स्कंद में कितने दयालु हैं, दक्ष के ऊपर कितने दया की, भागवता अपराध को भी सह लिया, जो दक्ष पहले शंकर का अपराध किया हुआ था, जो दक्ष सती का अपराध किया हुआ था, उसी दक्ष की तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए, पीछे की कोई बात ध्यान में नहीं लिए और उसको 8 भुजा से दर्शन दिए, और दर्शन देने के बाद भी नारद जी का भी अपमान किया तो भी भगवान ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। और अब देखो देवताओं के द्वारा भी अपराध होता है परंतु भगवान उसको भी सह लेते हैं, दया करते हैं। इसका अर्थ है हमारे जीवन में जान में अनजान में कितने अपराध होते हैं पता नहीं है, भगवान कैसे सह करके चलते हैं वो भगवान ही जानते हैं। एक भक्त था, भगवान की तपस्या करने लगा, आराधना करने लगा, भगवान ने 12 वर्ष में आकर दर्शन दिए, ध्यान से सुनना, 12 वर्ष में आकर दर्शन दिए, तो उस भक्त ने भगवान से पूछा कि महाराज आपने इतनी देरी क्यों लगाई, 12 वर्ष में आकर के आपने दर्शन दिया तो इतनी देरी कैसे की, हमको हिसाब बताओ 12 वर्ष का। भगवान कहने लगे देखो भाई भक्तराज, ऐसा है इतनी बड़ी सृष्टि है, कभी कहाँ काम करना पड़ता है, कहीं कहाँ काम पड़ता है, थोड़ी गलती हो गई हमसे ऐसा समझ लो। कह नहीं नहीं आपको हिसाब देना पड़ेगा, मैं 12 वर्ष से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ और आप बारह वर्ष से, बारह वर्ष के बाद यहाँ दर्शन देने आए, हमको हिसाब दो बारह वर्ष तक क्या किया। भगवान ने कहा भैया बता तो दिया ना, बहुत काम था, काम में लगा रहा, अब कोई बात नहीं, अब मिल गया, अब बात कर लो। लो बात करना है तो कहना है, नहीं हमको तो हिसाब चाहिए। ऐसा जब कहा तो इतने में ही वहां पर एक पत्थर की शिला थी, वो बोलने लगी कि ए भक्तराज, तुम किसके पूछ करके मेरे पर बैठे थे, बारह वर्ष का हिसाब लाओ। उसी समय में वो एक वहां पर वृक्ष था जिसके पत्ते वो खाते थे, वो वृक्ष बोलने लगा कि भक्तराज बारह बरस तक हमारे पत्ते और फल खाए हो, किसको पूछ करके खाए हो, हिसाब लाओ। वहां नदी बहती थी, नदी कहने लगी कि बारह बरस तक हमारा जल पिया है, हिसाब लाओ, ये जल किसको पूछ करके पिया। आकाश ने कहा कि हमने तुमको अवकाश दिया है, इसका हिसाब लाओ। वायु ने कहा कि हमने तुमको जिलाए रखा है, हम तुम्हारे अंदर संचरणशील हुए थे, हमारे कारण से जिए थे, हिसाब लाओ। ऐसे सब हिसाब पूछने लगे तो वो देखा कि अरे भगवान तो इतने दयालु, इतने दयालु, मेरे अपराधों का ख्याल ही नहीं करते, मेरा पालन पोषण में लगे हुए, और मैं भगवान से हिसाब पूछूं। झर झर रोने लगा, भगवान के चरणों में गिर गया कि महाराज मेरे जिंदगी का अब आप हिसाब मत पूछ लेना, मेरा हिसाब बहुत खोटा है, कहीं जोड़ में गलती है, कहीं बाकी में गलती है, कहीं भाग में गलती है, सब जगह गलतियां भरी पड़ी। अब जो भी कोई हिसाब है, अब महाराज उस हिसाब को बंद बही में रहने दो और आप अपना अनुग्रह मेरे पर करते रहो। राजा परीक्षित पूछते हैं कि देवताओं के द्वारा ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि जिस कारण से गुरु जी उनको छोड़ के चले गए। कहते हैं एक बार की बात है, जब ये त्रिभुवन का स्वामी बन गया इंद्र, तो अपने आसन के ऊपर बैठा हुआ था। देखो ये ऊंचे आसन पर बैठना है, बहुत खतरे की घंटी है, ये इंद्र के ऊपर क्या बीती है जो इंद्र ही जानता है। ऊंचे आसन पर बैठा हुआ था, रुद्र है, आदित्य है, रिभु है, ये सब उसकी सेवा में है, कोई पंखा कर रहे हैं, कोई चंवर डुला रहे हैं, कोई उनकी स्तुति कर रहे हैं, सिद्ध चारण गंधर्व मुनि ये सब उनकी स्तुति कर रहे हैं, विद्याधर अप्सर किन्नर ये नाच रहे हैं, गा रहे हैं। उनके बीच में जब वो बड़े सम्मान के साथ बैठे हुए थे और साथ में उनकी पत्नी पौलुमी शची भी बैठी हुई थी, तो बृहस्पति जी के मन में आया कि हमारा शिष्य आज हमारे कारण से त्रिलोकी का राजा बना हुआ है, ऊंचे आसन पर बैठा है, जाए हम देख करके तो आए। वे उस सभा के अंदर गए, तो सभा के अंदर गए तो अपने ऋषि को गुरु जी को देख भी लिया, लेकिन आसन से खड़ा नहीं हुआ। इतने आदमियों से सम्मान लेकर के भी एक को उसने सम्मान नहीं दिया, ये मान की भूख कितनी खराब होती है। इंद्र अपने आसन पर ही बैठा रहा और खड़ा नहीं हुआ। तब बृहस्पति जी ने देखा कि अब यहां से चल दे हो, अब यहां रहना ठीक नहीं है, हमसे ही शक्ति पाकर ये इतने ऊंचे पर आसन पर गया, हमको ही भूल गया है, चुपचाप वहां से रवाना हुए। ज्यों ही वो गुरुजी चुपचाप रुख बदल करके रवाना हुए तो इंद्र को बड़ा पश्चाताप हुआ। अब इंद्र ने सारी सभा के अंदर कहा, सुनो सुनो, एक बार ये सब कुछ बंद कर दो, हमारी बात सुनो। क्या बात हुई? अहो बत ममा साधु, देखो तो सही मैंने कैसा पाप किया है, मैंने अपने गुरु जी का अपने ऐश्वर्य के अंदर घमंड करके बड़ा भारी अपमान कर दिया है। त्रिलोकी का मैं स्वामी हूं और नहीं नहीं, मैंने तो एक बड़ा आसुर भाव किया, अभिमान करना, घमंड करना, गुरुजनों का तिरस्कार करना, ये कोई देवत्व है नहीं, ये तो आसुर भाव है, तो मैं अभी जाकर अपने गुरु जी को मनाता हूं। इस प्रकार तत्काल आसन से उठ करके गुरु जी के आश्रम में गए, पर गुरु जी तो ऐसे विचित्र थे कि अदृश्य हो गए, छिप गए। अब इंद्र ढूंढ रहा है, गुरु जी मिले नहीं। इतने में असुरों को मालूम चला कि अब गुरु कृपा इन देवताओं पर नहीं रही है, तो असुरों ने धावा बोल दिया स्वर्ग पर, उनके सारे अस्त्र शस्त्र छीन लिए। वे बेचारे देवता लोग भगे भगे गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा, महाराज ऐसे ऐसे हमारी दुर्दशा हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देवताओं, आप जैसा भी कोई अकल से हीन होगा, बुद्धिहीन होगा, तुमको मालूम है कि जब जब शुक्राचार्य जी की कृपा उन असुरों पर नहीं रही, तब तब तुमने उनके ऊपर आक्रमण किया और तुम विजयी बने, तो तुमको तो कम से कम अपने जीवन में गुरु कृपा तो सुरक्षित रखनी थी, तुम गुरु जी को ही भूल गए, तो इसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, अब भी तुम संभल गए, तुम्हारे मन में जो थोड़ा पश्चाताप हो गया, यही ठीक बात है। चलो, जो भगवान के आराधना करने वाले हैं और वे और गुरुजनों की आराधना करने वाले उनका कभी भी अनिष्ट नहीं होता है। अब तुम जाओ विश्वरूप को अपना गुरु बनाओ। देखो कितना दंड मिला है, अपने से बड़े को बड़ा मानना, अपने से बड़े के सामने क्षमा याचना करना कोई बड़ी बात नहीं, कठिन बात नहीं है, लेकिन अपने वास्तविक बड़े का तिरस्कार किया तो उसका फल यह हुआ कि अपने भतीजे को जाकर के गुरु बनाना पड़ा, तब जाकर के अभिमान नष्ट होता है। गरुड़ जी को घमंड हो गया कि मैंने राम जी का नागपास दूर किया है, वो गए शंकर जी के पास कि महाराज मेरा घमंड दूर, मेरे अंदर घमंड आ गया, मेरा घमंड दूर कैसे होगा, कि भाई मुझे तो फुर्सत नहीं है, जाओ तुम काकभूषण जी से राम कथा सुनो। अब पक्षियों का राजा तो गरुड़ है और पक्षियों में सबसे नीचा है वो कौआ है, अब गरुड़ जी को कौवे के पास भेजा तब जाकर घमंड दूर हुआ। ऐसे ही देवताओं को भेजा है विश्वरूप के पास, जो त्वष्टा का बेटा है, क्या उसके पास तुम जाओ, उससे तुम विद्या ग्रहण करो, वो तुम्हारा गुरु बने, तब जाकर तुम्हारा कल्याण होगा। ये अच्छी बात है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर के वे आए त्वष्टा के बेटा विश्वरूप के पास। देवताओं ने कहा कि देखो भाई, हम तुम्हारे अतिथि है, अतिथि की सेवा तो करना ही चाहिए, दूसरे में हम तुम्हारे पिता लगते हैं, तुम हमारे भतीजे हो तो हमारे तो लड़के ही हो, तो लड़के का सबसे पहला काम पिता की सेवा करना होता है, तो हम तुमको अपना आचार्य बनाना चाहते हैं। आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति, ध्यान देवे भागवत ने व्यवहार में भी कैसी बढ़िया शिक्षा दी है। जो आचार्य होता है वो वेद का साक्षात स्वरूप होता है, पिता मूर्ति प्रजापते, और पिता है वो ब्रह्मा जी की मूर्ति होता है। जो पिता की सेवा करेगा उसको ब्रह्मा जी की सेवा करने का फल मिलेगा। और भ्राता मरुत्पतेर मूर्ति, और भाई होता है वो इंद्र का स्वरूप होता है, भाई की सेवा से इंद्र की सेवा बनेगी। और माता साक्षात क्षितेश तनु, और माँ है वो साक्षात पृथ्वी का स्वरूप है, तो माँ की सेवा करोगे तो मात्र पृथ्वी के प्राणियों की सेवा का फल मिलेगा। दयाया भगिनी मूर्ति, और बहन है वो दया की मूर्ति होती है, उसके ऊपर दया करनी चाहिए, दया तत्व को सुरक्षित रखना है तो अपने बहन के ऊपर दया करो, उसके साथ प्रेम करो, स्नेह का बर्ताव करो। और अतिथि है ये धर्म की मूर्ति है, अतिथि सेवा से धर्म सुरक्षित रहता है। और अभ्यागत होता है वो अग्नि की मूर्ति है, और संपूर्ण प्राणी हमारे स्वयं की मूर्तियां हैं, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य हमारी सेवा करना, और हमारा कर्तव्य तुम्हें आचार्य मानकर तुम्हें आचार्य दृष्टि से देखना। तो उसके बाद विश्वरूप जी ने कहा कि भाई आपने बात तो कही तो बड़ी अच्छी है, लेकिन ये पुरोहिती वृत्ति है, कर्मकांड की वृत्ति है, इसको पवित्र ब्राह्मणों ने बहुत अच्छी वृत्ति नहीं मानी है, क्योंकि इसमें कहीं कहीं लालच आ ही जाता है। ये काम करेंगे हमको यहाँ पर इतनी दक्षिणा मिली, वहां भी इतनी दक्षिणा मिलनी चाहिए, ऐसे पहले आशाएं बंध जाती हैं, और आशा बंधना ये भी अच्छा नहीं, फिर आशा की पूर्ति नहीं होती है तो चित्त में दुख होता है। इसलिए धर्मशील ही विगर्हितम, धर्मशील पुरुषों ने इस पुरोहिती वृत्ति का सदा ही निषेध किया है, फिर भी आप लोग मेरे गुरुजन हैं, मेरे पिता हैं, मैं आपकी बात का निषेध तो कैसे करूं, मेरा धर्म तो शीलोंच वृत्ति से निर्वाह करने का था, लेकिन आपने आदेश दिया है तो मैं आपका पुरोहित बनने के लिए तैयार हूं। और हे परीक्षित क्या बतावे, विश्वरूप ने उनका पौरोहित्य स्वीकार किया और ऐसी उनकी रक्षा की देवताओं की, इंद्र को बैठा करके एक ऐसी वैष्णवी विद्या दी, उस वैष्णवी विद्या से सुरक्षित होकर के इंद्र अनायास ही दैत्यों पर असुरों पर विजय प्राप्त कर लिए और वापिस उनको स्वर्ग मिल गया। राजा पूछते हैं कि महाराज वो ऐसी कौन सी वैष्णवी विद्या थी कि जिसको स्वीकार करने पर इंद्र को खोया हुआ राज्य मिल गया, यदि आप उचित समझते हो तो उस नारायण कवच को मुझे भी सुनाइए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो, जिस समय में त्वष्टानंदन विश्वरूप इंद्र को ये नारायण कवच सुनाने लगे थे, तो उसकी विधि मैं तुमको सुनाता हूं। विश्वरूप ने कहा कि जिस समय में नारायण कवच को धारण करते हो, पाठ करते हो, तो हाथ पैर वगैरह धोकर के, यहां तीन नाम है, ओम नमो नारायणाय, ओम और ए ओम विष्णवे नमः, ये दो है, इनके द्वारा अपने अंगों का शुद्धिकरण कर लेना चाहिए। इसे ही अंगन्यास कहते हैं। माने मंत्रों के अक्षर हैं वो जिन जिन अंगों पर रख दिए जाते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णवे नमः, इस प्रकार से ओम विष्णवे नमः ऐसा करने पर जहां जहां हमारा हाथ रखा है वो सारे अंग पवित्र होते हैं। ये अंगन्यास है, ये करन्यास है, इससे बाह्य और अंतःकरण, बाह्य शुद्धि होती है और अंतः शुद्धि होती है। कहते हैं जब कोई भय हो, कब कोई दिक्कत आए तो इस नारायण कवच की शरण लेनी चाहिए और अपने हृदय के अंदर भगवान की आराधना करनी चाहिए। आत्मानम परमाध्याय ध्येयम षट शक्ति भेरयुतम, भगवान अनंत ऐश्वर्य वाले हैं, अनंत पराक्रम वाले हैं, भगवान अनंत ज्ञान वाले हैं, अनंत तपस्या वाले हैं, ऐसे छह शक्तियों से युक्त भगवान है। भगवान की आराधना करके अब भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान गरुड़ के ऊपर बैठे हुए सब प्रकार से मेरी रक्षा करें। आठ इनकी भुजा है और आठों भुजाओं में भगवान के दिव्य शस्त्र है। जल के अंदर मत्स्य मूर्ति मेरी रक्षा करे वरुण जी के पास से, थल के अंदर वामन भगवान हमारी रक्षा करे, आकाश में त्रिविक्रम हमारी रक्षा करे, कहीं महलों में चले जाएं, जंगल में चले जाएं या युद्ध का अवसर आवे तो नृसिंह भगवान हमारी रक्षा करे, रास्ते के अंदर वराह भगवान हमारी रक्षा करे, परशुराम जी महाराज पर्वतों में हमारी रक्षा करे, जंगलों में भरत और लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम है वो हमारी रक्षा करे, कोई हमारे पर मारण मोहन आदि क्रिया कर रहा हो, अविचार विद्या कर रहा हो तो उससे नारायण भगवान हमारी रक्षा करे, और लोगों में किसी प्रकार से हमारी हंसी हो रही है तो उससे नर है वो हमारी रक्षा करे, दत्तात्रेय जी महाराज हमारे कोई साधन में उन्नति नहीं हो रही है, कोई योग नहीं बन रहा है, साधन नहीं बन रहा है तो दत्तात्रेय जी हमारी रक्षा करे, और कपिल भगवान कलयुग का जो कर्म बंधन है उससे हमारी रक्षा करे, सनत कुमार कामदेव से हमारी रक्षा करे, रास्ते चलते कोई मंदिर है और हमने उसका कोई अपमान कर दिया या हमारे द्वारा पूजा नहीं हो पाई तो कूर्म भगवान हमारी रक्षा करे, खाने पीने में गड़बड़ हो गई, कुपथ्य हो गया तो धनवंतरी हमारी रक्षा करे, यज्ञ भगवान है वो लोकापवाद से हमारी रक्षा करे, झूठी निंदा, हमने ऐसा पाप किया नहीं है फिर भी लोग हमारी निंदा करते हो तो यज्ञ भगवान हमारी रक्षा करे, और लोगों के द्वारा कोई हमारे ऊपर कोई विपत्ति आने वाली हो तो उससे बलराम जी हमारी रक्षा करे, शेषशायी भगवान क्रोध से हमारी रक्षा करे, द्वैपायन वेदव्यास जी अज्ञान से रक्षा करे, बुद्ध भगवान पाखंड से रक्षा करे, कल्कि भगवान कलयुग के पापों से हमारी रक्षा करे, इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रातःकाल केशव भगवान गदा लेकर हमारी रक्षा करे, प्रातःकाल के बाद का जो समय है उसको गोविंद भगवान वेणु बजाते हुए मुरली बजाते हुए हमारी रक्षा करे, और मध्याह्न काल से पहले का जो समय है उसमें नारायण हमारी रक्षा करे, और ठीक दोपहर में चक्रपाणि विष्णु हमारी रक्षा करे, अपराह्न में माने दोपहर के बाद के समय में मधुदैत्य को मारने वाले भगवान हमारी रक्षा करें, सायंकाल के समय में माधव हमारी रक्षा करें, और ऋषिकेश है वो रात्रि लगते लगते हमारी रक्षा करें, रात्रि लग जाने पर पद्मनाभ हमारी रक्षा करें, श्रीवत्स को धारण करने वाले भगवान मध्य रात्रि में हमारी रक्षा करें, दामोदर मध्य रात्रि के बाद के समय में हमारी रक्षा करें, इस प्रकार से भगवान के अलग अलग रूप हमारे काल के अलग अलग रूपों में रक्षा करते चले जाएं। भगवान का चक्र है ये हमारी हरदम रक्षा करे, हमारे शत्रुओं को हमसे दूर रखे, उनके अंदर रहने वाला जितना भी पाप जाल जंजाल है वो सब नष्ट हो जाए। भगवान की जो गदा है जो फड़कने वाली है वो कूष्मांड है, वैनायक है, तरह तरह के हमारे पीछे लगे हुए दोष है उनको वो दूर कर देवे, और भगवान का जो शंख है वो राक्षसों के भूतों के प्रेतों के पिशाचों के हृदय में भय पैदा करने वाला हो जाए, और भगवान की जो तलवार है वो हमारे शत्रु सेना का संहार करने में समर्थ होवे, इस प्रकार से भगवान के आयुधों से प्रार्थना करें। जो भय ग्रहों से होता है, केतुओं से आता है, मनुष्यों से आता है, सांप आदि सरीसृपों से आता है, दांत वाले पशुओं से पक्षियों से आता है, ये सब के सब भय भगवान के नाम का जप करने से और भगवान का स्वरूप का ध्यान करने से नष्ट हो जाए। भगवान का जो गरुड़ है वो हमारी रक्षा करे। संपूर्ण आपत्तियों में भगवान रक्षा करने वाले हैं। यदि ये बात सत्य है तो हमारे जीवन के सारे उपद्रव नष्ट हो जाए। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, इनमें किसी प्रकार से विकल्प नहीं है, विकल्प रहित है स्वयं। और वे ही भगवान सगुण बनकर के और तरह तरह के आभूषण धारण करते हैं। यदि ये बात सत्य है तो वे भगवान सब रूपों से हमारी हरदम रक्षा करते रहे। आ ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे भगवान नरसिंह हमारी रक्षा करते रहे। ये नारायण कवच है। हे परीक्षित, इस नारायण कवच को जो धारण करता है वह व्यक्ति किसी को भी प्रेम से भी देख लेता है। पढ़ने वाला व्यक्ति किसी दूसरे को देख लेता है प्रेम पूर्वक तो उसका भय दूर हो जाता है। उस व्यक्ति के मन में कभी भय नहीं रहता जो नारायण कवच को धारण करने वाला है। कभी राजा का भय नहीं, कभी लुटेरों का भय नहीं, कभी ग्रहों का भय नहीं, व्याघ्र आदियों का भय नहीं। इसको एक बार कौशिक ब्राह्मण था, उसने नारायण कवच को धारण किया था। वह एक बार चला गया मरु प्रदेश में, वहां उसका शरीर शांत हो गया, उसके अंग वहीं पड़े रहे। अब मरु देश में कौन संभाले, मारवाड़ में बेचारे को प्यास लग आई, वहीं पर उनका शरीर शांत हो गया। अब कोई जंगल में गया नहीं, उनके शरीर को किसी ने जलाया नहीं। ऊपर से चित्ररथ था, वो विमान में गंधर्वराज चित्ररथ जा रहे थे, तो जो ही वो मृत शरीर के ऊपर से विमान जाने लगा तो विमान वहीं पर रुक गया। और रुक क्या गया, गगनात न्यपतत सद्य है। उसी समय में आकाश से वो चित्ररथ नीचे गिर गया, विमान सहित नीचे गिर गया। और पू देखने लगा क्या बात है, यहां मेरे द्वारा क्या अपराध हो गया। इतने में बाल खिल लिया है, छोटे छोटे अंगूठे के बराबर ऋषि, अंगूठे से भी छोटे छोटे ऋषि। कहते हैं बाल खिल्ली होते हैं, ये हमारे अंगुलियों के जो पर्व होते हैं इतने छोटे छोटे होते हैं। वो बाल खिल्ली 60,000 संख्या वाले वो आए दौड़े दौड़े के, चित्ररथ जी यहां पर एक ऋषि है, उनका संस्कार नहीं हुआ, ये नारायण कवच को धारण करने वाले थे, इनके ऊपर से जाने का आप अपराध कर रहे थे, इस कारण से आप नीचे गिर गए हो। तब उन्होंने उस ऋषि का सरस्वती नदी के किनारे जाकर संस्कार करवाया, वहां पर वे स्नान वगैरह करके आए, तब जाकर के चित्ररथ विमान में बैठ करके चलने लायक हुए। तो इस प्रकार से नारायण कवच की बड़ी महिमा है। इस विद्या को इंद्र ने विश्व रूप से ले लिया और फिर वापिस अपना खोया हुआ राज्य था वो प्राप्त कर लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो कभी कभी गड़बड़ी होती है, ये जो इंद्र है अपने स्वार्थ में बड़ा निपुण है। अब देखो इंद्र ने गुरु जी का अपमान किया ना, भगवान ने उसको कोई कुछ नहीं कहा। अब ये इंद्र के विषय में आगे सातवें स्कंद में प्रश्न कर लेंगे स्वयं राजा परीक्षित कि महाराज इंद्र के द्वारा गलती होती तो भगवान उसको कुछ नहीं कहते, और जब असुरों के द्वारा जरा सी भी कुछ होती तो भगवान उससे ताल ठोक के खड़े हो जाते हैं, बात क्या है। लेकिन ये छठे स्कंद में आए हुए इंद्र हैं भाई, यहां तो भगवान अपनी दया बरसाते हैं, सो बरसाते हैं, कितनी दया करते हैं भगवान, अपराधों को चाट जाते हैं। अब देखो इंद्र का और अपराध बताते हैं। विश्वरूप इनका गुरु था, अब गुरु था और वो इंद्र आदि देवताओं की अभिवृद्धि के लिए मंत्र बोल बोल करके आहुति दे रहा था। आहुति देते देते उस विश्वरूप के मन में आई, ध्यान देना, कि भाई आखिर ये दैत्य लोग हैं तो मेरे मामा ही तो हैं, मेरी माँ के ये भाई लोग हैं और ये मेरे पिता हैं और मेरे चाचा हैं, तो मैं मामाओं के नाश के लिए चाचाओं की उन्नति चाहता हूँ। नहीं नहीं, मैं इनकी तो उन्नति चाहता हूँ चाचा का, ये मामाओं का भी विनाश न हो मामाओं की भी वृद्धि हो। तो चुपचाप कुछ मंत्र ऐसे बोलते थे जिससे दैत्यों को प्रोत्साहन मिलता था। इंद्र ये बात समझ गए, इंद्र ने तत्काल उसके तीन सिर थे विश्वरूप के, तीनों सिर काट डाले। तो कितना अपराध किया, गुरु बना करके उसके साथ अपमान किया इंद्र ने, कहते उसके तीनों सिर काट डाले। तद्देव हिरणम तस्य धर्मालीकम सुरेश्वर आलक्ष्य तरसा भीतस्तच्छीर्ष्णानि अच्छिन्न दृशा। जब उसके तीनों सिर काट दिए गए तो उस तीनों सिरों को तीन पक्षियों ने ले लिया, पपीहे ने ले लिया, गैरे ने ले लिया और तीतर ने ले लिया। इधर ब्रह्म हत्या लग गई अब उसको, इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी तो ब्रह्म हत्या को चार जगह बांट दिया, पृथ्वी में बांट दिया, जल में बांट दिया, वृक्षों में दे दिया और स्त्रियों को दे दिया, जिनको इन्होंने इन चार हिस्सा करके इनको दे दिया और साथ में वरदान भी दे दिया। भूमि को वरदान दिया कि भाई तुमको कोई खोदेगा, थोड़े दिनों के बाद वापिस तुम बराबर हो जाओगी। ये तो वरदान दे दिया। और ऊसर भूमि जहां है, जहां कितनी खेती कर लो कोई फल पैदा होता ही नहीं, कोई खेती होती नहीं, वो ब्रह्म हत्या के रूप में अभी भी मौजूद है। जल को ये वरदान दिया कि भाई कितना ही तुमको कुएं से बावड़ी से निकाले, तुम वापिस कुएं बावड़ी में आ ही जाओगे। इसलिए कुआं खाली कभी होते ही नहीं, होते हैं थोड़ी देर के बाद वापिस जल आ जाता है। जल के ऊपर जो बुदबुदे काई वगैरह है ये ब्रह्म हत्या के रूप में है। तो अच्छे पुरुष होते हैं दृष्टम तद हरति क्षिपन, जब उस जल को लेना चाहते हैं तो ऊपर से उसको ये काई है, झाग है, इन सबको हटा करके फिर जल को लिया करते हैं। वृक्ष है, इन वृक्षों को वरदान दिया कि भाई तुमको कोई काटेगा तो तुम वापिस हरे भरे हो जाओगे। और ब्रह्म हत्या के रूप में गोंद है, ये ब्रह्म हत्या के रूप में वृक्षों के अंदर से निकलता है। और स्त्रियों को कहा कि आपके ऊपर पुरुषों का हाथ रहेगा, इस प्रकार से उनको वरदान दिया। और जो मासिक धर्म है वो ब्रह्म हत्या के रूप में है ही। इधर त्वष्टा को मालूम चला कि मेरे भाइयों ने, माने अर्थात इंद्र ने, मेरे भाई ने मेरे लड़के के तीनों सिर काट दिए हैं, तो त्वष्टा नाराज हो गया। त्वष्टा नाराज होकर के उसने एक बड़ा भारी यज्ञ किया और उसमें इंद्र शत्रु भी वरदस्व, यज्ञ करते आहुतियां डाली कि इंद्र को, इंद्र का शत्रु है वो हमारे इस यज्ञ से पैदा होना चाहिए। त्वष्टा के यज्ञ करने पर उस यज्ञ में से एक बड़ा विलक्षण पुरुष निकला। ऐसा पुरुष निकला कि एक बाण रोज दोनों तरफ बढ़े, चौड़ाई में भी एक बाण बढ़े और ऊंचाई में भी एक बाण बढ़े। ऐसे करके थोड़े दिनों में वो बहुत विशाल आकृति वाला हो गया। अब वो चलता था तो सारी पृथ्वी कांपती थी, आंख निकालता था तो कोई उसके सामने ठहर नहीं सकते थे। दरी गंभीर वक्त्रेण, बहुत बड़े पर्वत की गुफा के समान उसका मुख था। अब वो यूं अपने शरीर से चलने लगा तो सब असुर, सब देवताओं को, सबको उसने कब्जे में कर लिया। देवता लोग तो स्वयस्वी दिव्यास्त्र शस्त्र हो गई, सो अग्रसत तानि कृष्ण, देवताओं के अस्त्र शस्त्र थे वो उसने निगल लिए। अब लड़ो कैसे लड़ोगे, अस्त्र शस्त्र तो सब गिट गया और देवताओं को भगा दिया। सब देवता स्वर्ग छोड़ करके भग गए, जाकर के देवता और कहीं नहीं गए, भगवान नारायण के पास में गए। नारायण भगवान से कहा, महाराज ये वायु है, जल है, अग्नि है, पृथ्वी है, ये सब के सब ब्रह्मा आदि आप ही के द्वारा बनाए हुए हैं और आप ही के भय से भयभीत होते हैं। हम तो ये मानते हैं कि जैसे कुत्ते की पूंछ पकड़ करके कोई सागर को प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसे ही आपके बिना कोई व्यक्ति सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। आप परिपूर्ण हैं, आपके मन में कोई कामना नहीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप इन्हें मत्स्य रूप से अवतार लेकर अपने सींग के अंदर मनु की रक्षा की थी, सारी सृष्टि की रक्षा की थी। आप इन्हें ब्रह्मा को पैदा किया था, आप इन्हें इस सूकर के द्वारा इस पृथ्वी को उबारा था। हम देवता लोग इस वृत्रासुर से बहुत घबरा गए, वो वृत्रासुर था, वृत्र माने बढ़ने वाला, तो वृत्रासुर से हम बहुत घबरा गए हैं, इसी कारण हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारा कल्याण कीजिए। देवताओं की ये प्रार्थना सुनी, उस समय में प्रतीच्याम दिशि, पश्चिम दिशा की ओर भगवान का दिव्याति दिव्य रूप उन देवताओं ने देखा। ध्यान देवे, भागवतकार है भगवान के स्वरूप के विषय में बहुत सावधान करता है। भगवान के पार्षद भी वहां पर उपस्थित हो गए, सब भगवान के समान चार भुजा वाले हैं, सब शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले हैं, सब के सब घन के समान श्याम वर्ण वाले हैं, सब के सब पीताम्बर हैं भगवान के पार्षद, और उनके बीच में भगवान भी प्रकट हुए। अब भगवान प्रकट हुए तो कैसे पहचाने कि ये तो भगवान है और ये पार्षद है, तो भागवतकार ने एक पद में सारी बात दे दी कि बिना श्रीवत्स कौस्तुभव, ये कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स का चिन्ह केवल भगवान में होगा। इसलिए भगवान के दर्शन करें तो श्रीवत्स का चिन्ह, श्रीवत्स का चिन्ह क्या होता है प्राय जिज्ञासा रहती है, तो बताया रोमा वर्तो विशेष है, ये छाती के ऊपर जो रोम है उसमें थोड़ा सा कहीं घुमाव आता है बाईं तरफ या दाईं तरफ, थोड़ा घुमाव ज्यादा करके बाईं तरफ, कहते हैं वो बाईं तरफ जो घुमाव है उसको श्रीवत्स बोलते हैं। और किन्हीं किन्हीं के मत में एक स्वर्ण रेखा है उसको श्रीवत्स बोलते हैं, केवल भगवान में ही होती है और कहीं नहीं होती। और कौस्तुभ मणि है वो भी भगवान के ही गले में रहती है और किसी के यहाँ नहीं रहती। तो पार्षदों के बीच में भगवान प्रकट हुए आहा इतना दिव्य भगवान का रूप था, भगवान के दर्शन करते ही देवताओं के खुशी की सीमा नहीं रही और देवता लोग भगवान के चरणों में गिर गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब दंडवत पतिता राजन, जब सब देवताओं ने भगवान का इस प्रकार से स्तवन किया, भगवान को प्रणाम किया, तो अब देवताओं ने भगवान की स्तुति करना चालू किया। वाह महाराज कितना दिव्य आपका रूप है, ध्यान से सुनना हो, ये ऐसा पवित्र स्तोत्र है जो भगवान को भी पसंद आया है। भागवत में स्तोत्र स्तुतियां ये विशेष रूप से ध्यान देने की महिमा इन्हीं की है, इसलिए आप विशेषता से ध्यान देकर के सुने कि इन स्तुतियों में कितनी विचित्र विचित्र बातें आती हैं। देवता कहते हैं कि महाराज ये यज्ञ ही आपकी शक्ति है और आप सारे संसार को पैदा करके अपने में समेट लेते हैं, बड़ा विलक्षण आपका रूप है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इनके सम विषम जितनी गतियां हैं सब आप ही से पैदा होती हैं। हे नारायण, हे वासुदेव, हे महापुरुष, हे महानुभाव, हे परम मंगल, हे परम कल्याण, हे परम कारुणिक, हे जगदाधार, हे त्रिलोकनाथ, हे सर्वेश्वर, हे लक्ष्मीनाथ, कितने विशेषण ये और जगह ये नहीं आएंगे इतने विशेषण भागवत में जितने यहाँ आए हैं। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा आर्त होता है और उस समय में वो आर्त होकर के पुकारता है तो उसका एक एक शब्द मूल्यवान होता है। तो हे त्रिलोकनाथ, हे सर्वेश्वर, लक्ष्मीनाथ, बड़े बड़े परमहंस परिव्राजकों के द्वारा जब समाधि लगाई जाती है तब वे अपने अंतःकरण को बिल्कुल स्वच्छ बना करके आपके स्वरूप को देखा करते हैं और आप अपने निजानंद के अंदर सदा ही तल्लीन रहा करते हैं। महाराज आपके इस स्वरूप को हम लोग जान नहीं सकते हैं, आपका तो ये विनोद है और हमारे लिए दुर्वबोध बात है। आप महाराज शरीर रहित है, यद अशरण है, आप किसी के आश्रित नहीं है, आपका जैसा शरीर हम देखते हैं वैसा भी नहीं है, दिव्य आपका शरीर, दिव्य आपका स्वरूप है और इस सारे सृष्टि को आपने अपने संकल्प से पैदा किया है। सगुणम अगुण है, आप निर्गुण है लेकिन सगुण रूप से स्वयं प्रकट होते हैं, सगुण रूप से आप संसार को बनाते हैं, संसार का पालन करते हैं, संसार का संहार करते हैं। अब हमारे मन में ये प्रश्न पैदा होता है कि क्या आप सामान्य जीव जंतुओं के समान इस संसार के बना करके और जो करता धरता भोगता जीव बनता है वो आप ही है, अथवा आप इनसे उदास से उदासीन रहने वाले हैं, इस विषय में हम चक्कर खा रहे हैं। सब कुछ आप ही हैं तो जीव भी आप ही हैं, तो यमराज भी आप हैं तो दंड लेने वाले भी आप हैं और इन सब से अलग यमराज के नियामक भी आप हैं। आप कितना रोल करते हैं, कितना नाटक करते हैं, कितने रूप में आप बन सकते हैं हमको पता नहीं, हमारी बुद्धि चक्र खा रही है। यदि संसार में रचे पचे जीव आप हैं तो इनसे उदासीन रहने वाला कौन है, और इन सब से उदासीन रहने वाले आप हैं तो संसार में रस्ता पस्ता कौन है, हमारे तो यह बात समझ में नहीं आई। नहीं नहीं नहीं, समझ में आ गई महाराज, नहीं विरोध है, इसमें कोई विरोध की बात नहीं है, क्योंकि जीव है तो आप बन सकते हैं। अपरित गुण गण गण, आपके इतने गुण हैं, इतने गुण हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है। आजकल के नए नए जो शास्त्र बने हैं जिनमें कुतर्क है, प्रमाणाभास है, उसके द्वारा लोगों का अंतःकरण बहुत ज्यादा दूषित हो गया है, उन लोगों के लिए तो तरह तरह के मन में विवाद संवाद पैदा होते रहते हैं, लेकिन जिन्होंने आपका अनुभव कर लिया है उनके लिए करने धरने वाले भी आप हैं और सबसे अलग के अलग भी आप हैं।